दिन भर 8 अप्रैल सोमवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया।
राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है।
श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाबंदी की वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
किसी को बीमार को जाना था छोड़ा नहीं, हर जगह जो भी नाका था उनको बंद किया, सीज किया था सब, किसी को नहीं छोड़ते थे, आप देखो आदमी को भी चलने नहीं देता था।
केरल की वायनाड सीट पर एक से ज्यादा राहुल गांधी लड़ रहे हैं चुनाव। होंगी आपकी चिट्ठियां भी और खेल समाचार, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कीर्ति दुबे से। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने हिंदू राष्ट्रवादी मतदाताओं को रिझाने के लिए विशाल राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए ग्रामीण विकास में 300 अरब डॉलर निवेश करने का भी वादा किया है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को भी खत्म करने का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर राम मंदिर बनवाने की कवायद की जाएगी। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसके पास पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने के पक्के सबूत हैं। पाकिस्तान भारत के इस दावे को नकारता रहा है। पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने का दावा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान और भारतीय लड़ाकू विमानों के बीच डॉग फाइट हुई थी। इसमें भारत ने एक MiG-21 विमान गंवा दिया था और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। भारत ने फिर से कहा है कि अभिनंदन ने अपने MiG-21 विमान से पाकिस्तान का एक F-16 विमान गिराया था जो पाकिस्तान के हिस्से में जाकर गिरा। तुर्की में विपक्ष के नेता कमाल कुलिचदारोलू ने कहा है कि देश के चुनाव आयोग के हाथों में अब लोकतंत्र का भविष्य है। चुनाव आयोग को तय करना है कि इस्तांबुल के मेयर चुनाव के लिए हुए मतदान की गिनती दोबारा कराई जाए या नहीं। उन्होंने कहा है कि या तो लोकतंत्र बचा रहेगा या आयोग के हाथों उसकी हत्या हो जाएगी। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि 8 दिन पहले हुए मतदान के दौरान असंगठित अपराध हुए हैं। उन्होंने कहा,
सियासी पार्टी olarak bu organize suçun
हम देख रहे हैं कि कुछ संगठित अपराध हुए हैं। सिर्फ 13-14 हजार मतों के अंतर से कोई जीत नहीं जाता और अपने आप को विजेता घोषित नहीं कर सकता। इन सब में लूट के भी तत्व हैं, बैलेट बॉक्सों में भी कुछ चोरियां हुई हैं। ये थे एर्दोगान के शब्द। रजब एर्दोगान 1990 के दशक से इस्तांबुल के मेयर रहे हैं और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक साख बनाई थी। इस्तांबुल में उन्हें हराना उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। सूडान में सेना मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें सैन्य बलों ने पूरी तरह घेर लिया है। बीते 48 घंटों में प्रदर्शन कर रहे ये कार्यकर्ता कर्फ्यू का उल्लंघन करके राष्ट्रपति उमर अल बशीर का इस्तीफा मांग रहे हैं। सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन सेना के ही कुछ तत्व उनके बचाव में आ गए। सुनिए प्रदर्शन स्थल पर हुई गोलाबारी। सूडान में दिसंबर से राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। समूचे सूडान में हड़ताल बुलाई गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपने कर्मचारियों से घरों में ही रहने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली के बाहरी इलाके में हो रही लड़ाई की वजह से करीब 3,000 लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। बड़ी तादाद में लोग शहर के भीतरी इलाके में भी फंसे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम की मांग की है। इसराइल की एक अदालत ने फिलिस्तीनी नियंत्रण वाले गजा पट्टी इलाके में इसराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट इलाके में बंदूकें स्मगल करने के आरोप में फ्रांसीसी दूतावास के एक कर्मचारी को जेल भेजा है। रोमैन फ्रैंक पर राजनयिकों को दी जाने वाली सुरक्षा छूट का फायदा उठाने के आरोप भी लगाए गए हैं। जापान का रोमन कैथोलिक चर्च बच्चों के यौन शोषण के आरोपों की जांच करेगा। दुनिया भर के कई चर्च में बच्चों के यौन शोषण और ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालने के स्कैंडलों की जांच चल रही है। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने मोजाम्बिक के पूर्व वित्त मंत्री के अमरीकी प्रत्यार्पण का आदेश दिया है। पूर्वी मंत्री मैनुअल चांग पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। मेरा नाम है संदीप सोनी। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव सुन सकते हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र कहा है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने इसे झांसा बताया है। बहरहाल, बीजेपी के घोषणा पत्र की खास बातें क्या हैं, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। अमित शाह की अध्यक्षता में जारी किए गए घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया है कि राष्ट्रवाद उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र तीन चीजों पर आधारित है।
आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में तीन प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएगी जो मछुआरों के सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज देश के कई प्रदेशों में पानी की समस्या के समाधान को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, इसलिए हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। अपने गिनाए वादों में उन्होंने हर घर तक नल से जल पहुंचाने की बात की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनकी पार्टी का संकल्प पत्र दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। ये घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े करने वाली मानसिकता से तैयार नहीं किया गया है। ये एक मजबूत राष्ट्रवादी दृष्टि के साथ तैयार किया गया घोषणा पत्र है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं की तलाश की जाएगी और सही प्रयास किए जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार की 5 सालों की उपलब्धियां गिनाई।
जब मैं इंटरनेशनल फोरम से कहती हूँ कि हमने 34 करोड़ नए बैंक खाते खोले हैं, 340 मिलियन न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड, और ये विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समावेश है, द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड, तो लोग चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें पुरानी सरकार की तुलना करके अपनी सरकार का अध्ययन देती हूं कि पुरानी सरकार में हमारे यहां 12 किलोमीटर हाईवेज पर डे बनते थे, प्रतिदिन बनते थे, और आज 29 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के घोषणा पत्र को झांसा पत्र करार दिया है। पार्टी के नेता सुरजेवाला ने कहा,
जैसा मैंने कहा, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसो में फांसो। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों, तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें।
कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषणा पत्र की जगह माफीनामा पत्र जारी करना चाहिए था, क्योंकि उनकी सरकार 5 सालों में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। बीजेपी के आज के घोषणा पत्र में कुछ और भी वादे किए गए हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं। छोटे दुकानदारों को पेंशन दिया जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम कर दिया जाएगा, हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा और किसानों को 0% ब्याज पर 1 लाख रुपए कर्ज दिए जाएंगे। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
बीजेपी के इस घोषणा पत्र में नया क्या है, समझने के लिए मैंने हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश प्रियदर्शी से अब से कुछ देर पहले बात की।
भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो आया है, 50 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। मैं संकल्प पत्र को पढ़ रहा था और 2014 वाले घोषणा पत्र को भी देख रहा था, और इसमें जो 75 वादे किए गए हैं, उन 75 में से 31 किसानों के बारे में है, और उन्होंने जो 2-3 बड़ी बातें, जो नई घोषणाएं जो की हैं, बाकी तो किसानों की आय दुगना करने का वादा तो पहले से नरेंद्र मोदी सरकार कर चुकी है। इस संकल्प पत्र में कहा है कि ये काम 2022 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। छोटे किसानों के लिए पेंशन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 60 वर्ष की उम्र में जब पहुंचेंगे छोटे किसान तो उनको पेंशन दी जाएगी। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को भी पेंशन देने की बात संकल्प पत्र में कही गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस देश में बहुत तरह के आयोग हैं जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए, कारोबारियों के लिए कोई आयोग नहीं है, ऐसे आयोग का गठन करने का भी संकल्प है। इसी तरह से किसान सम्मान निधि एक जो योजना थी जो कि लागू हो गई है, पिछले बजट के समय उसकी घोषणा हुई थी, अब उसमें नया ये किया गया है कि छोटा बड़ा किसान सभी किसान एक समान होंगे और सबको 2,000 रुपये की 3 किस्तें मिलेंगी, यानी कि साल में 6,000 रुपये मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान के पास कितनी जमीन है।
ये नई घोषणाएं हुई भारतीय जनता पार्टी की। पुराने मुद्दों का क्या हुआ, जो सनातन मुद्दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 35A, इनके बारे में क्या कुछ कहा गया है?
देखिए, इस बार का जो चुनाव का और मुद्दा जो है बीजेपी का वो स्पष्ट है, और जोर देकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद सबसे पहले है। तो संकल्प पत्र के पहले पन्ने पर यह लिखा गया है, राष्ट्र सर्वप्रथम। और उसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है उसकी भी बात की गई है। राम मंदिर का जिक्र एक वाक्य में है और ये कहा गया है कि संविधान के अनुरूप जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो ये है कि सभी संभावनाएं तलाश की जाएंगी। यानी ये नहीं कहा गया है कि मंदिर वहीं बनाएंगे जैसा नारा बीजेपी के कार्यकर्ता लगाते रहे।
लेकिन 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो राम मंदिर मूर्त रूप लेगा। अब क्या हो गया?
जी, हाल ही में अमित शाह ने कहा था एक कार्यक्रम में कि हमारे पास पूर्ण बहुमत तो है सरकार में और हमारी इच्छा भी है मंदिर बनाने की, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो एक रुकावट आ रही है। और मामला चूंकि अदालत में है तो हम संवैधानिक तरीके से ही मंदिर बनाना चाहते हैं, यही बात उन्होंने कही है। इसी तरह से अनुच्छेद 370 के बारे में उन्होंने कहा है कि 35A जो है कश्मीर में, उसको हम हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय से हम प्रतिबद्ध हैं, हम आज भी प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह से एक और जो तीसरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, 370 हटाना चाहती है और राम मंदिर बनाना चाहती है। लेकिन ये मुद्दे जब से बीजेपी राजनीतिक पटल पर प्रमुखता से आई है तब से चले आ रहे हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसी बातें, घोषणाएं जो पिछले घोषणा पत्र में थी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इस बार नदारद, वो क्या है?
घोषणा पत्र में तो नहीं, लेकिन सरकार बनने के बाद एक नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल्ड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी, इस तरह के बहुत सारे ऐलान किए गए थे, उनका जिक्र इस संकल्प पत्र में या तो नहीं है या बहुत कम है। एक और निराश करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि रोज़गार के मामले में किसी भी तरह का कोई आंकड़ा या फिगर नहीं दिया गया है, कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। कहा यह ज़रूर गया है कि 22 क्षेत्रों में, जो कि भारत के एक अच्छे क्षेत्र हैं जहां रोज़गार की संभावना है, उनमें नई नीतियाँ बनाकर रोज़गार का सृजन करने का प्रयास किया जाएगा।
ये थे राजेश प्रियदर्शी, जो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का विश्लेषण कर रहे थे।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की, जहां श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी आदेश की वजह से हफ्ते में 2 दिन निजी वाहन नहीं चल पाएंगे। ये आदेश कल से लागू हो चुका है। इस पाबंदी के पहले ही दिन आम लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बता रहे हैं श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर।
प्रतिबंध के पहले दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरे लिंक रोड्स पर सुरक्षा बलों ने जगह जगह खारदार तारे बिछाई थी और किसी भी प्राइवेट गाड़ी को चलने फिरने की इजाजत नहीं दी गई। श्रीनगर के एक छात्र अनीसा का कहना था,
अब ये तो कंप्लीट बैन था, इनकन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ कश्मीर की जनता में काफी ज्यादा रोष पाया जा रहा है। आम लोगों का कहना था कि ये फैसला भारत सरकार की ओर से कश्मीरियों को दबाने का एक और हरबा है। बीबीसी ने कई आम लोगों से राजमार्ग पर सरकारी प्रतिबंध लगाने के हवाले से बात की।
आम लोगों पर किसी को बीमार को जाना था छोड़ा नहीं, हर जगह जो भी नाका था उनको बंद किया, सीज किया था सब, फिर बड़े बड़े अफसर वहाँ बैठे हुए थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। आप देखो आदमी को भी चलने नहीं देता था। हमारे ऊपर ये इनका जुल्म होता ही रहेगा जब तक अल्लाह हमें इसे छुटकारा नहीं देगा।
मुझे नहीं लगता बाकी किसी भी जगह पे ये ऐसा सच में सोच भी सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे हर एक अनरेस्ट का बहुत ही गलत फायदा उठाया है।
बिल्कुल, इस बैन को हटाना चाहिए और जो भी मसले हैं बाकी उनको हल करना चाहिए एज पर यूएन उस रेजुलेशन, उन सभी चीज़ों को हल करना चाहिए क्योंकि खून खराब से कुछ नहीं होने वाला है।
4 अप्रैल को सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि हफ्ते में 2 दिन यानी बुधवार और रविवार को किसी भी प्राइवेट गाड़ी को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि इन 2 दिनों में सिर्फ सेना की कानवाई ही राजमार्ग पर चल सकती है। कश्मीर के मेन स्ट्रीम राजनीतिक दलों और अलगाववादियों ने भी राजमार्ग पर प्रतिबंध लगाने को निंदनीय बताया है। उधर आज पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के चेयरमैन शाह फैसल ने राजमार्ग पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
हमारा मानना है कि बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सोचे समझे बगैर इस ऑर्डर को बनाया गया था और चनाची ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी थी। हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर कुछ फैसला जल्दी सुनाने वाला है। आज उस पर एक पहली हियरिंग हुई जिसमें नोटिस इशू की गई स्टेट गवर्नमेंट को और कल इस PIL को आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगाया गया है।
हालांकि अधिकारियों का कहना था कि कल प्रतिबंध के पहले दिन उन सभी आम लोगों को अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ने की इजाज़त दी गई जिनको जरूरी कामों से विभिन्न जगहों पर पहुंचना था। गौरतलब है कि 14 फरवरी को इसी राजमार्ग पर जिला पुलवामा के लखपोरा इलाके में CRPF के एक कानवाई पर चरमपंथी हमले में CRPF के 40 जवान मारे गए थे। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा 2 और राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है कर्नाटक में, जहां एक ही नाम के 2-2 उम्मीदवार एक ही सीट से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
नाम में क्या रखा है ये बात तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन जब चुनाव होते हैं और उम्मीदवारों के नाम एक जैसे हो तब समझ में आता है कि नाम कितना मायने रखता है। केरला के वायनाड में लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उन्हीं के नाम से मिलते जुलते 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े कर दिए गए। इनमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार से बहुत कोशिशों के बावजूद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन एक और राहुल गांधी से BBC की बात हुई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और हम आमने सामने हैं, दोनों राजनीतिक नेता हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं और हम राज्य स्तर पर छोटे नेता हैं। यहाँ एक ही नाम के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम गंभीर रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे राहुल गांधी के शब्द। राहुल गांधी अपना नाम इस तरह शब्द विन्यास करते हैं जैसे हुल की बजाय गुल उपयोग करते हैं। उनके नाम से ही पता चलता है कि वो तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले के हैं। उनका वायनाड आने का मकसद ये था कि कोयम्बतूर लोकसभा क्षेत्र में उनका नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया क्योंकि वो नामांकन पत्र ठीक तरीके से नहीं भर पाए। राहुल गांधी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके पिता कांग्रेस के सदस्य थे, इसीलिए उनके बहन का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी और उनका नाम राहुल गांधी है। तो किन विषयों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, हम अभी भी आए हैं यहाँ लोगों से बात करने के लिए। हम लोगों से बात करने के बाद ही उनके मांगों के लिए लड़ेंगे। जैसे हमें लगता है कि सरकार को हर चीज पर टैक्स नहीं डालना चाहिए, हम इसके लिए लड़ेंगे। ये थे राहुल गांधी के शब्द। राहुल गांधी जय हिंद फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस तरह के नाम सिर्फ वायनाड में सीमित नहीं है। कर्नाटका के मंड्या लोकसभा क्षेत्र में 2 सुमलता ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है और यहाँ सुमलता अम्बरीश भी हैं जो कांग्रेस के नाखुश कार्यकर्ता और BJP के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ हैं मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी के बेटे और फिल्म एक्टर निखिल गौड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक जैसे नाम वाले इन उम्मीदवारों में से कौन चुनाव जीतता है और कौन हारता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब बारी है श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और सूर्यांशी पांडे आज मेरे साथ हैं।
नमस्कार
सूर्यांशी जी, के पास आज मैं बहुत सारी डाक से आई चिट्ठियां देख रहा हूँ।
हाँ, और सबसे पहले जो डाक की चिट्ठी है वो आपको मंत्रमुग्ध करने को तैयार है, क्योंकि जो कविता के फॉर्म में उन्होंने भेजी है, बहुत ही खूबसूरत कविता उन्होंने
अच्छा
लिखी
लिखते
है।
कौन है
ये? है लक्ष्मण दास शर्मा, मंडलाना नारनौल से लिखते हैं, हरियाणा।
हरियाणा से, जी हाँ, पुराने श्रोता है हमारे और हमेशा चिट्ठी लिखते हैं।
और ये लिखते हैं, पत्रोत्तर में झंडे गाड़े ऐसी है बहन इंदु पांडे।
अच्छा,
बीबीसी श्रोताओं के हितैषी ऐसे इंसान है इमरान कुरैशी।
वाह,
साहस पूर्ण करे कार्य ऐसी हस्ती दिव्या आर्य।
अरे क्या बात है,
अनहोनी को कर दे होनी ऐसी महान है संदीप सोनी।
संदीप सोनी भाई, ये तो लक्ष्मण दास जी ने जो कविता लिखी है, और भी आगे है क्या?
दुनिया जहां में आदर्श राठौर, इन जैसा नहीं कोई और।
कोई और, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप की इस चिट्ठी से ये जाहिर होता है कि आप हम लोगों का जो काम है उसको कितने गौर से सुनते हैं और कितना अपनापन है इस चिट्ठी में। तो ऐसा लगता है कि घर के किसी आदमी ने हमें चिट्ठी लिखी है।
ये जो अगला पोस्टकार्ड है, ये एक तो बहुत ही खूबसूरत लिखाई है, ये तो आप खुद भी देखेंगे।
जी
तो...
बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु वर्मा जी की है ये लेख, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया।
ये ककोली से लिखते हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश, और ये लिखते हैं कि 29 मार्च की शाम की सभा में दिन भर में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री TN सेशन पर जो प्रस्तुत की गई विवेचना उन्हें बहुत अच्छी लगी, और उसके लिए वो रेहान फजल को शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं।
जी बिल्कुल, रेहान फजल का शुक्रिया हम भी अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर जब चुनावों की गर्मी चारों तरफ महसूस की जा रही है, रेहान फजल अपने खजाने से बहुत पुरानी कुछ रत्न निकाल के लेके आए थे।
बिल्कुल, और यहाँ पर एक और रत्न की बात हो रही है, ये सलमान रावी की जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी रिपोर्टिंग जो है, जो बस्तर से उन्होंने की थी,
ये लेकिन लिखते कौन है, इनका नाम क्या है?
मैंने सोचा थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर।
अच्छा, सस्पेंस क्रिएट किया जी आपने, तो रहस्य को उजागर कीजिए और बताइए कि ये चिट्ठी लिखी किन्होंने।
ये जयंत कुमार दास हैं, जो बेलवा कटिहार से लिखते हैं।
कटिहार से, जी, क्या लिखते हैं दास साहब?
ये यही लिख रहे हैं कि आदिवासियों एवं किसानों की जमीन हड़पने की और फिर उसके बाद सरकार को वापस करनी पड़ी वो जमीन, इस पर जो उन्होंने रिपोर्ट की सलमान रावी ने, वो बेहद अच्छी रिपोर्ट होने लगी। और जो छत्तीसगढ़ के इलाकों से ऐसी खबरें आना और ऐसी खबरों का पता चलना, ये सबसे ज्यादा अहम काम है जो वो कर।
जी मुझे याद है, इस रिपोर्ट में सलमान रावी ने उन तमाम गाँव के किसानों से बात की थी जिनकी जमीन या तो जा चुकी है या जो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे चाहे इस मिट्टी में मिल जाएं, इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने वहां से की। मुझे लगता है यही हमारा कर्तव्य भी है कि जिन जगहों पर आम तौर पर मीडिया की नजर नहीं जाती है, हम कोशिश करते हैं बीबीसी हिंदी रेडियो के जरिए आप तक वो सब आवाजें, वो सब कहानियां आप तक पहुंचाए।
आगे बढ़े तो ये कमलेश कुमार सक्सेना जी ने लिखा है, ये उत्तराखंड से लिखते हैं और इनकी लिखाई उतनी उमदा तो नहीं है लेकिन
अच्छा हाँ, ये गाड़ी घाट कोटद्वार जिला पौड़ी उत्तराखंड से लिखते हैं। और वाकई आप सही कह रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आ रही है। ये लिखते हैं कि इंडिया बोल अच्छा लगा 30 मार्च का, सरकार गरीबों के लिए योजना बनाती है मगर असली सवाल यही है कि गरीब किसे समझा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल उठा रहे हैं कि गरीब की परिभाषा क्या है। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़े तो ये प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जो हैं, वो
भाई इनका पूरा पता पढ़िए नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे।
कैथनपुरवा, सातनपुरवा, अमेठी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश से लिखते हैं जी, क्या लिख रहे हैं श्रीवास्तव?
ये लिख रहे हैं कि वह बीबीसी हिंदी के
पुराने श्रोता हैं, ये हमको मालूम है, लिखते क्या है।
सबसे जरूरी बात इन्होंने ये लिखा है कि माननीय राजेश जोशी जी ने आपकी राय में कहा था कि पुराने श्रोताओं की जगह नए श्रोताओं के पत्र शामिल होंगे, तो वो उसका स्वागत तो करते हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक व्यंग कसा है उन्होंने कि क्या आप लाल कृष्ण आडवाणी की तरह बीबीसी के अपने पुराने श्रोताओं को केंद्रीय मार्गदर्शक के रूप में बस डालेंगे?
मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं भेज देंगे? अरे प्रमोद जी, ऐसा कैसे संभव है? और ऐसा दरअसल हम तो अपने हर श्रोता को मार्गदर्शक मानते ही हैं, पुराने श्रोता हों या नए श्रोता हों। मैंने ये बात कही थी कि नए श्रोताओं को भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जो पुराने श्रोता चिट्ठी लिखते हैं और जिनकी चिट्ठियां बार बार हम प्रसारित करते हैं, कई बार उनको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि नए लोगों को जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोद जी आप चिट्ठी लिखना बंद कर दें। कई बार आपकी चिट्ठी का इस्तेमाल होगा, कई बार नहीं हो पाएगा।
हाँ बिल्कुल, ये चिट्ठी नीली कलर की है जो असद अली ने जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से भेजा है। और वे लिखते हैं कि मुझे बीबीसी हिंदी सेवा की चुनावी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लग रही है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी और मीडिया चैनल हैं उसके अंदर जो रिपोर्टिंग होती है वो बल्कि मुझे प्रोपेगेंडा लगती है, ना कि बीबीसी की।
देखिए असद भाई, आपकी इस चिट्ठी से हमारा खून बढ़ गया है। यानी जो आपने एक तरह से हमारे काम की और हमारी हौसला अफजाई की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सूर्यांशी। तो चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और इसी के साथ वक्त हो चला है खेल समाचारों का। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं, क्या हलचल है आईपीएल के मैदानों में आज?
जी, अगर आईपीएल की बात की जाए तो शनिवार और रविवार को दो दो मुकाबले खेले गए, लेकिन अब आज एक ही मुकाबला है जहां किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। थोड़ी देर पहले किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन क्या हो सकता है इस मैच का परिणाम या कैसा रहेगा मुकाबला, ये जानने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत की क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन से।
देखिए, हैदराबाद मेरे ख्याल से तो ऑन पेपर और अब तक जो मैंने देखा था पिछली मैच को छोड़ के ऐसा लग रहा था कि सबसे बेहतरीन टीम थी, लेकिन पिछली मैच में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा उनका और शायद ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो पर, तो इससे उनको बचना होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि हमारे ओपनर ही हमेशा मैच जिता देंगे या राशिद खान और मोहम्मद नबी जिता देंगे तो ऐसा होना नहीं है। विलियमसन क्योंकि इंजर्ड है, वो नहीं है, कैप्टन नहीं है और बैट्समैन नहीं है, तो उसका फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी मैं मानता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन टीम है। पंजाब भी बहुत अच्छी टीम है, उनके पास गेंदबाज अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अश्विन जो है बहुत ही अग्रेसिव कैप्टन और थोड़े से ऑफ बीट कैप्टन भी नजर आए हैं और खुद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो और एम अश्विन जो उनके साथ एज अ स्पिनर जोड़ीदार है उनके ऊपर काफी निर्भर है कि पंजाब किस तरह से परफॉर्म करे।
दरअसल संदीप, अगर पिछले मुकाबलों की बात की जाए तो जो हैदराबाद की टीम है वो नए गेंदबाज जो कि मूलतः वेस्ट इंडीज़ के लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए अपना पहला मैच खेल रहे थे आईपीएल में, अल्जारी जोसेफ, जिन्होंने 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे, उसकी वजह से हैदराबाद हारा। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात की जाए तो इतनी स्लो बैटिंग की सरफराज खान ने और इसके अलावा केएल राहुल ने जो हार का कारण बनी, चेन्नई ने 160 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर, जिसके जवाब में पंजाब 5 विकेट खोकर 138 रन बना पाई थी। उधर अगर भारतीय महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो मलेशिया के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में थोड़ी देर पहले अंतिम समाचार मिलने तक टीम 2-0 से आगे थी। और सबसे ज़रूरी बात कि भारतीय क्रिकेट टीम जो कि विश्व कप में खेलेगी उसके लिए उसका ऐलान 15 तारीख को होगा और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी टीम में जगह बनाते हैं, क्योंकि कई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हैं जैसे शिखर धवन, या फिर अगर बात की जाए रोहित शर्मा की भी, और खुद विराट कोहली अपनी टीम को नहीं जिता पा रहे हैं। लेकिन इनके जगह तो पक्की है, लेकिन फिर भी ये उस तरह की फॉर्म में नहीं है जैसा होना चाहिए।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं कीर्ति दुबे से।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि संवैधानिक दायरे में रहकर राम मंदिर बनवाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए भी $300 अरब का निवेश किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसके पास पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने के पक्के सबूत हैं। पाकिस्तान भारत के इस दावे को लगातार खारिज करता रहा है। तुर्की में विपक्ष के नेता कमाल कुलिचदारोग्लू ने कहा है कि देश के चुनाव आयोग के हाथ में अब लोकतंत्र का भविष्य है। चुनाव आयोग को तय करना है कि इस्तांबुल के मेयर चुनाव के लिए हुए मतदान की गिनती दोबारा कराई जाए या नहीं। सूडान में सेना मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि सैन्य बलों ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि।